ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
आज से 5 वर्ष पूर्व किसानों को लेकर एक खास योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एक ऐसी योजना जिससे कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन तय होती है और जिसमें किसान अपना मासिक योगदान देते हैं। उस मासिक योगदान के साथ साथ केंद्र सरकार भी अपना योगदान देती है और 60 वर्ष के बाद किसानों को एक सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था सरकार ने बनाई और कल यानी 12 सितंबर को इस योजना के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस योजना पर और इसके हवाले से किसानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद।
चर्चा से पहले आइए इस योजना पर एक रिपोर्ट सुनते हैं।
2019 में 12 सितंबर के दिन भारत में छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए एक खास योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना में किसानों को बढ़ती आयु में आर्थिक सुरक्षा देते हुए पेंशन की तर्ज पर पहली बार एक सुविधा प्रदान की गई। स्वैच्छिक और योगदान पर आधारित इस पेंशन योजना का मकसद है कि देश के कृषि क्षेत्र में लगे करोड़ों किसानों को पेंशन मॉडल से जोड़कर उनके लिए सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। कल इस महत्वपूर्ण योजना की 5वीं वर्षगांठ है, इसलिए आज हम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के महत्व और इसकी अब तक की सफलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। कम भूमि पर खेती करने वाले और सीमांत किसानों के सामने आर्थिक स्थिरता की चुनौती रही है। कम उत्पादन और सीमित आय से भविष्य के लिए आर्थिक स्रोतों को जुटाना ऐसे किसानों के लिए कठिन रहा है। भारत में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से पूर्व किसानों के लिए भविष्य के निवेश और पेंशन की कोई विशेष योजना नहीं रही थी। देश के इस बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पेंशन आधारित योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत एक न्यूनतम राशि का योगदान किसानों से लिया जाता है और 60 साल की उम्र में उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में किसानों की पात्रता को लेकर कई अहम बातें हैं। पात्रता के तहत किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और वे 1 अगस्त 2019 वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध होने चाहिए। इस योजना में भुगतान करने के लिए विशेष आयु को भी रखा गया है। 18 से 40 की उम्र के किसान 55 से 200 रुपए तक की राशि हर महीने जमा करा के योजना में शामिल हो सकते हैं। जितनी राशि किसान जमा कराते हैं, केंद्र सरकार भी समान राशि का योगदान करती है। जीवन बीमा निगम LIC इस पेंशन फंड का प्रबंधन करता है। 6 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 23 लाख से ज्यादा किसान सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं, जो इस कार्यक्रम की व्यापक स्वीकृति और महत्व को दर्शाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा गया है। इन राज्यों में व्यापक स्तर पर किसानों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। इस योजना के तहत बिहार 3,04,000 से अधिक पंजीकरण के साथ सबसे आगे है, जबकि झारखंड 2,05,000 से अधिक पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। आगे आने वाले समय में और पंजीकरण बढ़ने की संभावना है। इसका कारण ये भी है कि छोटे और सीमांत किसानों की संख्या भारत में काफी है और उनके पास ऐसी पेंशन की सुरक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का एक सरल ढांचा रखा गया है, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर अपने लिए भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए किसान जनसेवा केंद्र या राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता ले सकते हैं। इस योजना में ये प्रयास किया गया है कि दूर दराज क्षेत्रों में भी किसानों के लिए पंजीकरण की सुलभ प्रक्रिया हो। इस योजना का एक अहम पहलू है कि किसान अपनी मौजूदा कृषि सब्सिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं। इस योजना के फायदों पर अगर हम नजर डालें तो पहला लाभ है कि ये योजना सुनिश्चित पेंशन की किसानों को गारंटी देती है। हर लाभार्थी को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की हर लाभार्थी को 60 साल की उम्र में 3000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। ये सुनिश्चित आय उन किसानों के लिए है जो खेती से सेवानिवृत्ति लेकर अपना शेष जीवन बिना किसी आर्थिक कठिनाई के व्यतीत करना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत अहम है। ये एक तरह की परिवार पेंशन भी है। यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है जो नियमित रूप से इस योजना में अपना मासिक योगदान दे रहा है, तो उनके जीवन साथी को 1500 रुपए प्रति माह की परिवार पेंशन मिलेगी। ये लाभ केवल तब लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से इस योजना के लाभार्थी नहीं हों। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका एक अहम लाभ ये भी है कि सरकार इसमें समान मासिक योगदान करती है। केंद्र सरकार योगदानकर्ता के योगदान की समान राशि पेंशन फंड में मिलाती है, जिससे फंड की स्थिरता बढ़ती है। इस योजना का सबसे अहम लाभ है कि इस योजना में लचीली योगदान दरें हैं। योजना में मासिक योगदान 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हो सकता है। इससे ये लाभ है कि किसान अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से अपनी राशि रख सकता है। इससे कम आय वाले किसानों के लिए ये योजना सुलभ हो जाती है। योजना में पंजीकरण करवाना आसान है। किसान नजदीकी जनसेवा केंद्र से पंजीकरण की सहायता ले सकते हैं, या इसके अलावा जो किसान तकनीकी रूप से सक्षम है वे स्वयं भी योजना के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी पंजीकरण में सहायता करते हैं। वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। लाभार्थी को पंजीकरण के समय कुछ जरूरी जानकारी देनी होती है, जैसे किसान और उनके जीवन साथी का नाम और जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, IFSC और MICR कोड, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर। किसान सरकार से मिल रहे दूसरे लाभों का उपयोग योजना में स्वैच्छिक योगदान करके राशि को जमा कर सकता है। इसके लिए पात्र किसान को नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करवाना होगा। इससे उनके योगदान का ऑटो डेबिट उस बैंक खाते से अधिकृत हो जाएगा जिसमें उनके दूसरे लाभ जमा किए गए हैं। इस योजना में ये भी सुविधा दी गई है कि यदि कोई किसान योजना से बाहर आना चाहते हैं, तो प्रक्रिया लचीली रखी गई है। यदि कोई सदस्य 10 वर्षों से कम समय में योजना से बाहर निकलता है तो उन्हें योगदान के साथ ब्याज की राशि वापस मिलती है। यदि सदस्य 10 वर्षों के बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलता है तो उसे योगदान के साथ अधिक ब्याज मिलेगा। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति या पत्नी नियमित योगदान जारी रख सकते हैं या योगदान और ब्याज की राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं।
सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत में हम योजना पर तो आएंगे ही, लेकिन शुरुआत में आपसे यही मूल सवाल मैं पूछूंगा कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा है। इन किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कितनी बड़ी चिंता है, क्या चुनौतियां हैं और क्यों आवश्यक है इन किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का होना?
देखिए, देश में 14 करोड़ किसानों की संख्या है, 14 करोड़ से ज्यादा ही हो। इनमें 86 यानी 86 से 87% तक किसान छोटे व सीमांत हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं है। इसलिए भारत सरकार इनके हितों को देखते हुए, इनके हित संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू करती रहती है। और ऐसे किसानों को सरकार का समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बिना उनके सपोर्ट के उनका जीवन यापन ठीक से हो नहीं सकता। खेती किसानी के बूते वो अपनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। इन सब चीजों का ध्यान सरकार रख रही है और उसी का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये सिर्फ सीमांत और छोटे किसानों के मद्देनजर शुरू की गई है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि किसान जितना खेती करता है वो अपने पेट भर ले, ये बड़ी बात है। साल भर के लिए वो अपना पेट भरने, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास इतना अनाज नहीं होता कि साल भर वो पूरा कर सके। ऐसे में उसकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान अगर सरकार नहीं रखती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी के मद्देनजर ढेर सारी योजनाएं चलाई है, जिसमें मानधन योजना खासतौर से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो 60 साल के बाद, यानी वो काम करने की स्थिति में, खेत में खेती किसानी करने की स्थिति में नहीं होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता है खेतों में उतने लंबे समय तक वो टिक नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। उन्हें जो खेतिहर मजदूरी के तौर पर मजदूरी भी करना चाहे तो उनके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में सरकार की यह मानधन योजना जिसे कहा जा रहा है वो उनके लिए समझिए कि बहुत बड़ी चीज है, जिससे उनका रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60 साल के बाद, यानी बुजुर्ग किसानों को यह योजना बहुत लाभदायक साबित होती है उनके जीवन के लिए। जी
सिंह साहब, हमने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जहां एक तरफ किसानों की जो वर्तमान आय है उसमें वृद्धि को लेकर ये योजना शुरू की गई, जिससे किसान एक निश्चित राशि से कम अपने जो जरूरी संसाधन हैं, बीज हैं या जो कृषि के लिए जरूरी चीजें हैं उनको जुटा सकें, और ऐसे में सीमांत और छोटे किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ हमने देखा। लेकिन जब हमने ये पाया कि किसानों को, जैसा कि आपने कहा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं खेती से और 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनके लिए एक पेंशन मॉडल नहीं था, तो सरकार ने एक पेंशन मॉडल दिया, तो क्यों जरूरी है ऐसा पेंशन मॉडल जिससे कि किसानों का भी, अन्य लोग जो दूसरी सेवाओं में हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था है या जो बीमा करवा लेते हैं तो उनके लिए भी एक इंश्योरेंस हो, एक पेंशन व्यवस्था हो।
देखिए, समाज के हर हिस्से में आप ध्यान दें तो चाहे वो बुनकर हो, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, या किसानी करने वाला, कोई भी खेती किसानी करने वाला, या खास तौर से कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं इम्प्लाई यानी कर्मचारी, उनके लिए तो उनके वेतन से एक हिस्सा कटता रहता है या वो कटाते रहते हैं, और वो पेंशन उनके जीवन में जब वो रिटायरमेंट उनका आता है तो उनको प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि योजना में जो उनका पैसा कटता है वो उनके भविष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही जब उनके पेंशन की योजनाएं जो होती हैं, जो हर महीने उनको रिटायरमेंट के बाद नौकरी जब छूट जाती है और जो एक निश्चित जो तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, बंद हो जाता है वेतन, तो ऐसे में उनके जीवन का आधार या उनके जीवन में रोजमर्रा के जो जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पेंशन। तो पेंशन योजना उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों के लिए, किसी भी किसान के लिए, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी किसान हो, किसी किसान के लिए कोई इस तरह की योजना नहीं है। देखिए, आपने कहा ना कि किसान, छोटे और मझोले किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ सोचिए कि सिर्फ 10-12% को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे किसान, यानी 10 करोड़ से ज्यादा किसान हैं देश में जिनके पास सिर्फ इतनी सी खेती होती है कि वो अपना लालन पालन, अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त खर्चे या बुढ़ापे के लिए उनकी जो जरूरतें होती है रोजमर्रा की वो कैसे पूरा करें, उसके लिए कोई साधन नहीं था, उनके लिए कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। सरकार ने इस दिशा में उनके लिए एक ऐसा न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन योजना कह सकते हैं, इसके बुढ़ापे में ये सुरक्षा कवच के तौर पर सरकार ने यह शुरू किया, जो इनके लिए समझिए कि रामबाण साबित होती है, इनके लिए इनके जीवन का आधार बनती है। निश्चित मासिक पेंशन कम से कम 3,000 रुपए उनको मिलेगा, और वो किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक की अभी है, जो खेती किसानी में लगे हुए हैं, वो अपनी आमदनी से एक छोटा सा अमाउंट 55 रुपए से 200 रुपया, मात्र 200 रुपया अगर हर महीने जमा करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ही पैसा, इतना ही धन अपने अकाउंट से, अपने खाते से, सरकार के खजाने से उनके लिए जमा करती है पेंशन योजना में, ताकि उनकी जब 60 साल उम्र उनकी हो जाए तो उन्हें यह राशि 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 रुपया उनके जीवन में बहुत मायने रखता है। गांव के उस छोटे किसान के लिए, गरीब किसान होता, बार बार कहते हैं गांव, इस देश का किसान गरीब है, निश्चित रूप से वो 70-80% 90% किसान सच में गरीब हैं, उनकी जरूरतें बुढ़ापे में बढ़ जाती हैं, उनके रोग, उनके इलाज की सुविधा, उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके बाल बच्चे अगर, या उनकी जो पीढ़ी है उनको समर्थन नहीं देती है या उनको पैसे नहीं देती है, ऐसे में सरकार समर्थन देती है। विभिन्न वर्गों के लोगों को तो कहीं ना कहीं से मिलता ही है ना
जी,
कर्मचारियों को अपने पेंशन मिलता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, या अनऑर्गेनाइज सेक्टरों के लिए भी पेंशन योजना आई हुई है, लेकिन यही एक बड़ा वर्ग था जिसके लिए देश की एक बड़े हिस्से के लिए, जो करोड़ों की संख्या में है, 10 करोड़, 8 से 10 करोड़ किसानों की संख्या, जिनके पास कोई आधार नहीं होता था वो जीवन के बुढ़ापे के दिनों में, जो देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का अन्नदाता के तौर पर जाना जाता था, उसके पेट पालन के लिए, और बुढ़ापे में उसके लिए कोई आधार नहीं होता था, सरकार ने हाथ बढ़ाया और उन्हें एक ऐसा मंच दिया कि जहां वो एक छोटा सा अंश अपने कमाई का अगर वो अपने इस पेंशन फंड में जमा करते हैं, और इसके लिए बड़ी सिंपल सी विधि है कि पैसा कहां जमा करेंगे, कौन जमा करेगा, वो जो CSC खुला हुआ है, जो कॉमन सर्विस सेंटर हर गांव गांव हर पंचायत में लगभग खुला हुआ है, आप उस पंचायत में चले जाइए, उस CSC में जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर में, और जाकर वहां कर कुछ नहीं करना है, आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, पेंशन का अपना फंड खुलवा लीजिए, और 55 रुपए से जैसी आपकी उम्र है उस हिसाब से 55 से 200 रुपए पर मंथ का जमा करना है, और सरकार अपनी जो हिस्सेदारी देती है क्योंकि खर्च ज्यादा आता है पेंशन में, इसके बाद भी सरकार इसलिए समर्थन देती है ताकि इनके जीवन का जो अंतिम समय है, बुढ़ापे का समय है, जो 20 साल 25 साल 30 साल जितना भी उनकी उम्र होती है, उनको ये पैसा मिलता रहे और वो निर्बाध जीवन ठीक से जी सके। 12 सितंबर 2019 में ये योजना का शुरुआत की गई कमल जी, और आज सोचिए कि हम लोग सितंबर में बात कर रहे हैं, 11 सितंबर 2024 का आज दिन है, और समझिए आज की स्थिति में मुश्किल से 23.5 लाख किसानों ने ही अब तक इसमें अप्लाई किया है, जो संख्या बहुत ही कम है। मेरा अपना मानना है कि किसान भाइयों को और लोगों की भी जिम्मेदारी, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, प्रसारण करने वालों की जिम्मेदारी है, समाज के उस वर्ग की जिम्मेदारी है कि किसान वर्ग को जागरूक बनाएं, जो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आएं और इस पेंशन का लाभ उठाएं। सरकार ने अगर हाथ बढ़ाया है तो उस हाथ बढ़ाने के लिए किसानों को उसे पकड़ना चाहिए, इस लाभ को लेना चाहिए, ताकि जब बुढ़ापा उनका आए, 60 साल की उम्र हो, तो उनके हाथ, उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत न आए, ताकि रोजमर्रा की जो उनकी अपनी जरूरतें हैं वो अपनी कमाई से पूरी होती रहे। हमें लगता है भारत सरकार इस दिशा में पूरा जोर दे रही है, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गांव गांव के किसानों तक ये बात पहुंचेगी। हम सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबको समझाइए, बताइए, जो भी सुन रहे हो, ये बहुत ही साधारण योजना आज देखने को लग रही है, लेकिन जिस दिन आप 60 साल के होंगे और जब आपके हाथ में पैसे नहीं होंगे और आपके पड़ोस के किसी दोस्त के हाथ में 3,000 रुपए महीने आएंगे और आपके एक पैसा नहीं आएगा, तो उस समय बहुत बुरा लगेगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए और हमें और आपको इस योजना को कैसे लोगों तक पहुंचाए, सरकार कैसे पहुंचाए, जितने भी प्रसारण करने वाले लोग हैं, खास उसे सोशल मीडिया के लोगों से हम अपील करेंगे कि ये लोगों तक पहुंचाएं। ये सब बहुत ऐसी समस्या नहीं है, ये बहुत ही नेक कार्य है जिससे लोगों तक पहुंचा करके उनका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। जी
जी सिंह साहब, जैसा कि आपने पंजीकरण की बात की तो आंकड़ा भी आपने दिया कि 23.5 लाख के आसपास किसान अब तक इसमें पंजीकरण करवा चुके हैं। इसमें हम अगर राज्यों को देखें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसमें उड़ीसा, इन राज्यों में ही ज्यादातर किसानों ने पंजीकरण करवाया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो सीमांत और छोटे किसानों की जो संख्या है, क्या इन राज्यों में ज्यादा है, या आपको लगता है कि इन राज्यों में किसान ज्यादा जागरूक हैं कि ज्यादा संख्या में यहाँ पंजीकरण हुआ है, क्या कारण नजर आता है?
जिन राज्यों का आपने नाम बताया, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख के आसपास लगभग है, और हर बाकी स्टेट्स में 40,000, 50,000, 10,000, 20,000 किसान हैं, जबकि संख्या इनकी बढ़नी चाहिए। अब इस डेटा को अगर हम देते हैं, इस आंकड़े को देखते हैं, तो हमें लगता है पूर्वी क्षेत्र के राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मोस्टली इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या ज्यादा है, बिहार की ज्यादा है, छत्तीसगढ़, और ये वो राज्य हैं जो गरीब राज्य कहे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों की जागरूकता बेहतर है दूसरे राज्यों के किसानों के बनस्पत। मेरा मानना है कि उन राज्यों में भी इस योजना का लाभ पहुंचाने की जरूरत है और उनको ये बताने की जरूरत है कि इसका लाभ कैसे दिया जाएगा। जैसे मेरा मानना है कि सीएससी के थ्रू ये पहुंचाया जाए, जहां पर बीज केंद्र जैसे बनाई है सरकार ने, एक बड़ा केंद्र खोला है जहां
समृद्धि केंद्र जैसे,
जहां पर बीज मिलता है, खाद मिलती है, और उनकी जितनी भी इनपुट्स, जितने भी खेती से जुड़ी चीजें होती हैं, वो सब की एक ही जगह एक बिक्री केंद्र है। ऐसे केंद्रों पर भी इस तरह की योजनाओं को पहुंचाने की जरूरत है, ताकि किसानों तक सीधी जानकारी पहुंचाई जा सके। सिर्फ 50 रुपए 55 रुपए से लेकर आप अगर योजना को शुरू करते हैं का लाभ, आप सोचे कितने दूर तक जाती है, और इस सूचना को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन राज्यों में अभी योजना की शुरुआत नहीं हुई है, मेरा मानना है कि सभी लोगों को मिलकर, समाज के लोगों को, किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। दूसरी चीज एक मैं बताऊं कि पंजीकरण कैसे कराएं। किसानों के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि किसान जब अपने केंद्रों पर जाएं, और ये चाहे तो अपने घर में, अपने आसपास के अगर पढ़े लिखे बच्चे हों जो वेबसाइट चलाना जानते हों, तो पोर्टल पर जाकर के भी वो अपने नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, और उस बैंक का जो IFSC या MICR कोड होता है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये तो 3-4-5 चीजें होती हैं जो बड़ी सिंपल सी होती है, साधारण सी चीजें, जानकारी है, उसमें अगर अपलोड कर दिया जाए। देखिए, इस देश के किसानों के पास आज के तारीख में बड़ी संख्या में किसानों के हाथ में मोबाइल आ गया है, और मोबाइल के मार्फत तमाम चीजें वो देखते होंगे, सोशल मीडिया की तमाम चीजें वो बार बार देखते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इस तरह की वेबसाइट को देखना जरूरी है, ताकि ये जो लाभ की चीजें हैं उनको किसान कैसे इसका लाभ उठा सकें उन तक पहुंचाने की जरूरत है। और ये जो PMKMY के नाम से जो ये योजना है किसानों को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है और बुढ़ापा में 60 साल के बाद उनके उत्साह को बनाए रखती है। खेती किसानी में उनके जो अनुभव हैं अपने जो अगली पीढ़ी है उनको कैसे ट्रांसफर करेंगे, अपनी जानकारी कैसे दे सकते हैं, उन किसानों के पास बहुत कुछ जानकारी है। अगर ये जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी, अगर जिनके हाथ में 3,000 रुपया आने लगेगा, हाथ में पहुंचता है एक पेंशन के तौर पर, तो वो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें किसी से अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा में पहुंचाने के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आने वाले दिनों में इसका लाभ दिखाई देगा। हमें लगता है कि अभी योजना की शुरुआती 4-5 साल हुए हैं, लेकिन अगर ये योजना के का जो नतीजा है बेहतर दिखेगा जब योजना का लाभ लोगों के हाथों में पहुंचना शुरू होगा। कमल जी, अभी क्या हो रहा है कि जिन किसानों ने अभी इसमें अप्लाई किया है उनको ये नहीं मालूम, क्योंकि किसान ऐसा समुदाय है जिसमें न जाति है, न धर्म है, न वर्ग है, न भेद है, न एकदम अजीब तरह कमाल के लोग हैं यहाँ किसान। लेकिन कानों सुनी कम आंखों देखी ज्यादा मानता है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात ये बात कही थी अपने एक भाषण में कि हमारे देश का किसान आंखों देखी मानता है, कानों सुनी नहीं सुनता है। लेकिन हमें किसानों को ये बताने की जरूरत है कि जिन किसानों को इसका लाभ उठाना है अपने सामुदायिक केंद्रों पर जाएं और इसको समझें कि क्या है ये योजना। अगर इस योजना का लाभ उठाते हैं तो 60 वर्ष की आय को पहुंचने पर उनको न्यूनतम गारंटी 3,000 की पेंशन की गारंटी मिलती है, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है, पारिवारिक पेंशन। मजेदार ये देखिए कि अगर वो किसान 60 साल की उम्र के बाद जो 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन पाएगा, अगर वो किन्हीं वजहों से उस मान लीजिए
आकस्मिक मृत्यु हो जाती है,
स्वाभाविक मौत हो जाए या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपया या पत्नी है तो उसके पति को 1,500 रुपया यानी आधा 50% के बराबर पेंशन राशि पाने का हकदार होता है। यह योजना अपने जीवन साथी को भी गारंटी देती है और पेंशन की सुरक्षा देती है। इसमें पीएम किसान लाभ का कहते हैं कि स्वैच्छिक योगदान देने के लिए पीएम किसान लाभों का उपयोग करना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए पात्र छोटे और सीमांत किसानों का नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है और जमा कर देता है।
बिल्कुल,
बैंक खाते से उनके योगदान को अपने आप डेबिट को अधिकृत करेगा और पीएम किसान में लाभ ये जाते रहेंगे अपने। अगर मान लीजिए उनका कोई बैंक खाता है उससे अगर वो ऑटो डेबिट का ऑप्शन ले लेते हैं। मोस्टली किसानों ने जनधन योजना खोल रखी है क्योंकि उनके अकाउंट में 6,000 रुपया ऑलरेडी सरकार का जो पीएम किसान का धन है वो हर साल 6,000 रुपया आता है, प्लस वो अपने कमाई से अपनी आमदनी से अगर जो पैसा अपने अकाउंट में करते हैं जनधन योजना में, तो ज्यादातर किसानों के जनधन योजना लगभग सब किसानों ऐसे किसानों के जनधन योजना है के बैंक खाते हैं। ऐसे बैंक खातों को सिर्फ जोड़ देते हैं इस योजना से तो वह अब स्वतः उनको रोज जमा करने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जो भी उनका बनता है उम्र के हिसाब से वो अपने आप 50 रुपया या 75 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया मैक्सिमम अधिकतम 200 रुपया तक हर महीने वो कट जाया करेगा और वो उनके जो पीएम किसान का जो पेंशन अकाउंट है खाता है उसमें वो जमा होता रहेगा।
सिंह साहब, हम यहाँ ये आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो ये उसमें एक अहम पहलू होता है कि योजना का स्वरूप एकदम लचीला हो और वो जटिल ना हो। हम किसान मानधन योजना में भी यही देखते हैं कि ये योजना लचीली और सरल है जिससे कि हर किसान तक इसकी पहुंच हो सके। और जैसा कि आपने इसमें ये भी बताया कि इस योजना से किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, कितनी राशि जमा कर सकते हैं, हम अगर किसानों की क्षमता की बात करें तो भारत में जैसा कि इस किसान में भी शामिल है कि 2 हेक्टेयर भूमि तक के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो भारत में ऐसे किसानों की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्थिक सुरक्षा को लेकर किसानों के पास विकल्प इस मामले में जो एक खास विकल्प है इस योजना के माध्यम से जो अब उपलब्ध हो चुका है वो आगे आने वाले समय में कैसे एक बड़ी भूमिका निभाएगा उनकी जीवन सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जीवन बीमा निगम यानी LIC की भी भूमिका है जो इस पूरे तंत्र को प्रबंधन पूरी योजना को प्रबंधित कर रहा है।
LIC पूरे फंड को संचालित करता है और यही पेंशन योजना को चलाता है, क्योंकि देश का एक बड़ा PSU है, सार्वजनिक उपक्रम है जो देश के बड़े वर्ग को पेंशन योजना को चलाता है, संचालित करता है और इसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो सरकार जो किसान अपना फंड देगा उतना ही सरकार से फंड लेगा, ये सब कुछ करने का काम LIC का पेंशन फंड करता है। दूसरी चीज को 2 हेक्टेयर तक जो किसान छोटे या सीमांत किसान है इन किसानों को सरकार की ओर से जो पीएम सम्मान निधि की ओर से जो उनके पैसा मिलता है, जो उनकी खेती किसानी से जो उनको थोड़ी बहुत फंड जो उनका पैसा बचता है वो अपने बैंक में ही जमा करते हैं, और ऐसे किसानों को 6,000 रुपया साल ये मिलता है, प्लस अगर मान लीजिए इसमें से सिर्फ 55 रुपया से लेके 200 रुपए तक, तो अगर शुरुआती दौर में 55 रुपया ही जमा करना है, अगर मान लीजिए 18 साल का कोई किसान इसमें शामिल होना चाहता है तो उसको सिर्फ 55 रुपए जमा करना, सिर्फ 55 रुपए, इस 55 रुपए को कुछ नहीं करना, उसको रोज जमा नहीं करने जाना है, न कहीं नहीं जाना है, न बैंक जाना है, न पोस्ट ऑफिस जाना है, और आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सरकार पीएम किसान से लेकर के मानधन योजना तक और ऐसे भी न जाने नए खेती किसानी को लेकर सरकार चला रही है जिससे किसानों का लाभ हो, किसानों के उपज को बाजार में बेचने के लिए, उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए, उनको उनके इनपुट जो कुछ भी खेती की जरूरतें हैं उनको कैसे सब्सिडी के रेट पर, रियायती दर पर कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, और ये किसान जो है ऐसे वो भी किसान इसमें शामिल है जिनका साल भर अपना पालन पोषण करने भर का अनाज जिनके नहीं पैदा होता, सरकार उनके लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने ऐसे 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनाज उपलब्ध करा रही है, यानी उनके लिए खाने, उनके खेती करने, उनकी जीवन यापन के लिए, उनकी जरूरतों के लिए लगातार सरकार उनको हेल्प कर रही तरह तरह की। और अब ये जो मानधन योजना है ये तो इनके रिटायरमेंट की बात की, सरकार के विभिन्न हिस्सों में चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे आरएनआई सेक्टर में करते हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, ऐसे लोगों की ही तर्ज पर इन छोटे और मझोले किसानों को जो 2 हेक्टेयर तक कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ के किसान, ऐसे किसानों की संख्या मैं फिर कह रहा हूँ 87 से 88% हो सकती है, 90% भी हो सकती है संख्या, क्योंकि रोज जोत घटती जा रही है। तो अगर किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है और इन किसानों को आर्थिक और सामाजिक और खाद्य सुरक्षा लगातार, मैं कह रहा हूँ सरकार आर्थिक दे रही है, सामाजिक दे रही है और खाद्य सुरक्षा तीनों दे रही है, इतना ही नहीं इन किसानों के लिए जो गांव में लोग रहते हैं इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान सरकार रखती है, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी सुविधा सरकार की ओर से मुफ्त दी जा रही है, जो 5 लाख तक का इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज वो परिवार करा सकता है। ऐसे में किसानों को ये सब जीते जी तो हो ही रहा है। अगर किसान 60 साल के बाद पेंशन 3,000 रुपया लेने के बाद अगर वो गाहे बगाहे किन्नी वजहों से स्वाभाविक मौत से या आकस्मिक किसी एक्सीडेंटल या किसी ऐसी तरह से उसकी मौत होती है तो उसके जो निकट संबंधी हैं उन्हें भी आधा जैसे बाकी हिस्सों में पेंशन दी जाती है ऐसे उन्हें भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ये सब सारी योजनाएं किसानों को हित को देखते हुए विभिन्न तरह से उनको इस तरह का अम्ब्रेला बनाया जा रहा है, इस तरह का पूरा छाता बनाया जा रहा है कि ताकि उनके लिए किसी भी एंगल से किसी भी आयाम से उन्हें किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
अंत में सिंह साहब ये आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना का एक लचीला स्वरूप ये भी है कि किसान यदि योजना से बाहर आना चाहते हैं तो उनको स्वेच्छा से बाहर आने की इसमें प्रावधान किए गए हैं, और साथ में योजना से बाहर आने पर भी उनको जो प्राप्त लाभ है, जो ब्याज है, उसकी राशि के साथ सुविधा दी गई है, जिससे कि किसान अपने उस राशि का एक ब्याज के साथ बढ़ी हुई राशि का लाभ उठा सकें। तो इस स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए पैसा जमा करते हुए किसान को कहीं से भी लगता है कि उनका पैसा डूब सकता है, उनके इसका कोई औचित्य नहीं है जमा करने का, किन्हीं वजहों से कोई संदेह होता है, हालांकि संदेह की कोई गुंजाइश सरकार ने नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर किसान को किसी भी तरह का संदेह होता है कि मेरा पैसा यार गलत जगह जमा हो रहा है, इस पैसे का कोई औचित्य नहीं जमा करने का, नुकसान हो रहा है, या उसे पैसे की तत्काल जरूरत है कि भाई हम इस पेंशन योजना से बाहर होना चाहते हैं, तो सरकार ने ये भी प्रावधान कर रखा है कि अगर आपका जितना पैसा जमा है पेंशन फंड में उस पैसे को ब्याज सहित आपको वापस किया जाएगा।
निश्चित रूप से, और जैसा कि आपने अपनी बात में कहा था कि अभी ये योजना शायद साधारण प्रतीत होती हो, लेकिन आने वाले समय में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस योजना पर विस्तार से सिंह साहब आपने अपने विचार रखे, जानकारी भी साझा की, हमसे आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद कबीर जी।
अभी आप सुन रहे थे लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।